नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। परिवहन सुधारों में उत्तराखंड को बड़ी उपलब्धि, केंद्र से 125 करोड़ की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने आगामी विशेष गहन पुनरीक्षण की तैयारियों के संबंध में सभी जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। प्रदेश में जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान सम्पन्न, 5 लाख से अधिक लोगों ने भाग लेकर विभिन्न सेवाओं का लाभ लिया। और उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं। 2 लाख से अधिक छात्र छात्राएं होंगे शामिल। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं गीता नेगी और अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड में परिवहन क्षेत्र में किए जा रहे व्यापक सुधारों को केंद्र सरकार ने सराहते हुए पूंजीगत निवेश योजना 2025-26 के अंतर्गत राज्य को 105 करोड़ रुपए से अधिक की प्रोत्साहन राशि मंजूर की है। साथ ही अप्रैल से पूर्व लागू किए गए सुधारों के लिए 20 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि भी स्वीकृत की गई है। इस तरह 125 करोड़ की प्रोत्साहन राशि परिवहन विभाग उत्तराखंड को प्राप्त हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त यह प्रोत्साहन राशि राज्य में स्मार्ट और सुरक्षित परिवहन व्यवस्था विकसित करने में सहायक सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में परिवहन क्षेत्र में तकनीकी आधारित सुधारों को प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ करने के साथ साथ पारदर्शिता भी सुनिश्चित हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक इन्फोर्समेंट और वाहन स्क्रैपिंग नीति के प्रभावी क्रियान्वयन से राज्य में दुर्घटनाओं में कमी लाने के साथ ही पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने सचिवालय में आगामी विशेष गहन परीक्षण यानी एसआईआर की तैयारियों के संबंध में सभी राज्य के सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि अप्रैल में उत्तराखंड में एसआईआर प्रस्तावित है, लेकिन देहरादून, ऊधम सिंह नगर और नैनीताल जिलों में मतदाताओं की मैपिंग की प्रगति लक्ष्य के अनुरूप कम है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित जिलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि जिन बूथों पर मैपिंग प्रतिशत कम है, वहां संबंधित ईआरओ और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। उन्होंने कहा कि जो भी अधिकारी एसआईआर के कार्य में लापरवाही बरतेगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिलों को तय समय सीमा में एसआईआर की तैयारियों के क्रम में बूथ जागरूकता समूह के गठन के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 77% बूथों पर बूथ लेवल एजेंट्स की तैनाती हो चुकी है। उन्होंने जिलाधिकारियों को बूथ लेवल एजेंट्स की 100% तैनाती के लिए राजनैतिक दलों के साथ फिर से बैठक करने को कहा। बैठक में श्री पुरुषोत्तम ने एसआईआर हेल्प डेस्क के लिए जिलों में शीघ्र अतिशीघ्र कार्मिकों की तैनाती किए जाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कांग्रेस द्वारा इंडिया एआई इंपैक्ट समिट जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नाटकीय प्रदर्शन कर भारत की छवि धूमिल करने का प्रयास निंदनीय है और इससे कांग्रेस की राष्ट्रविरोधी सोच उजागर होती है। उन्होंने कहा कि भारत का विरोध कर देश के दुश्मनों का एजेंडा चलाने वाली कांग्रेस ने करोड़ों देशवासियों के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब पूरा विश्व भारत की तकनीकी, आर्थिकी और सामरिक शक्ति को स्वीकार कर रहा है, तब इस प्रकार की राजनीति देश हित के विपरीत है।
एआई इंपैक्ट समिट 2026 जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा जिस प्रकार से नाटकीय प्रदर्शन कर भारत की छवि धूमिल करने का प्रयास बेहद शर्मनाक है। यह सिर्फ विरोध नहीं है बल्कि देश की प्रतिष्ठा पर सीधा हमला है। कांग्रेस अब एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि देश विरोधी एक सोच का प्रतीक बनती जा रही है। जब पूरा विश्व भारत की तकनीकी, आर्थिकी और सामरिक शक्ति को मान रहा है, तब कांग्रेस भ्रम, नकारात्मकता, झूठा अफवाह का एजेंडा चला रही है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुद्रप्रयाग जिले में अगस्त मुनि विकासखंड के ग्राम बीरों देवल में आयोजित मां चंडिका बन्याथ देवरा यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने मां चंडिका मंदिर महायज्ञ में भाग लिया और पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। उन्होंने आयोजन स्थल को धार्मिक और आध्यात्मिक संगम का प्रतीक बताते हुए कहा कि 20 वर्षों के बाद आयोजित यह महायज्ञ केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण का भी प्रतीक है। उन्होंने कहा, ऐसे आयोजन न केवल समाज में समरसता और एकता को सुदृढ़ करते हैं बल्कि नई पीढ़ी को अपनी परंपराओं और मूल जड़ों से जुड़ने का अवसर भी प्रदान करते हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने माँ चंडिका मंदिर प्रांगण और मंदिर समूह का पुरातत्व विभाग के माध्यम से पुनर्निर्माण कराए जाने तथा तहसील बसुकेदार में नवीन तहसील भवन निर्माण की घोषणा की।
समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
प्रदेश में 65 दिनों तक चलाया गया जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान कल संपन्न हो गया। 17 दिसंबर से शुरू हुए इस अभियान के दौरान प्रदेश भर में 681 शिविर लगाए गए, जिनमें 5,33,452 नागरिकों ने प्रत्यक्ष तौर पर भाग लेकर विभिन्न सेवाओं का लाभ लिया, साथ ही अपनी समस्याएं भी दर्ज कराई। एक रिपोर्ट।
प्रदेश में जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत आयोजित शिविरों में 51,000 से अधिक शिकायती पत्र प्राप्त हुए, जिसमें से 33,755 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्रों के लिए 74,184 आवेदन प्राप्त हुए, जिन पर त्वरित गति से कार्य किया जा रहा है। वहीं करीब 3,00,000 लोगों ने विभिन्न सेवाओं का भी लाभ लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस अभियान के माध्यम से लोगों को बिना किसी भागदौड़ के सरकारी सेवाओं का लाभ मिला है और यही सुशासन की पहली सीढ़ी है। उन्होंने कहा कि यह अभियान इस बात का प्रमाण है कि प्रदेश सरकार योजनाओं की घोषणा तक सीमित नहीं है बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। उन्होंने कहा कि यह विशेष अभियान भले ही संपन्न हो गया हो, लेकिन प्रशासन लगातार जनता के संपर्क में बना रहेगा। अधिकारियों को भविष्य में भी जन शिकायतों का त्वरित समाधान करने को कहा गया है। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से संतोष थपलियाल।
उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं। प्रदेश भर में 1,261 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 156 संवेदनशील और 6 अति संवेदनशील केंद्र चिन्हित किए गए हैं। इस वर्ष 2,00,000 से अधिक छात्र छात्राएं बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे। विद्यालय शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि परीक्षाओं को नकलविहीन, निष्पक्ष और पारदर्शी वातावरण में सम्पन्न कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विभागीय अधिकारियों, जिला प्रशासन और पुलिस को समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक, प्रश्न पत्रों की सुरक्षित आपूर्ति और गोपनीयता बनाए रखने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। डॉ. रावत ने परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे बिना तनाव के आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दें। अभिभावकों और शिक्षकों से भी परीक्षा के दौरान बच्चों का मनोबल बढ़ाने की अपील की गई है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने बागेश्वर नगर क्षेत्र स्थित खाद्य प्रतिष्ठानों का सघन निरीक्षण अभियान चलाया। होली पर्व के दृष्टिगत विशेष रूप से ऐसे वितरक और आपूर्तिकर्ता प्रतिष्ठानों की जांच की गई जो बाहरी जिलों से खाद्य सामग्री मंगाकर स्थानीय विक्रेताओं को आपूर्ति करते हैं। इस दौरान टीम ने दूध और दाल के सैंपल लेकर उन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने सभी खाद्य कारोबारियों को निर्देशित किया कि वे खाद्य सामग्री केवल पक्के बिल और परिवहन पत्र के साथ ही मंगाएं तथा एक्सपायर्ड या वापसी योग्य सामग्री का अलग से रिकॉर्ड रखना सुनिश्चित करें। खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया कि होली पर्व के दौरान जिले में मिलावटी खाद्य पदार्थों की रोकथाम के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा। अब एक नज़र आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। शीर्षस्थ, अमेरिकी कोर्ट की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ को अवैध घोषित करने की खबर आज सभी समाचार पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित की गई है। अमर उजाला लिखता है, सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ किया निरस्त, ट्रंप ने थोपा 10% अस्थायी शुल्क, भारत पर अब 18 की बजाय 10% होगा टैरिफ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। परिवहन सुधारों में उत्तराखंड को बड़ी उपलब्धि, केंद्र से 125 करोड़ की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने आगामी विशेष गहन परीक्षण की तैयारियों के संबंध में सभी जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। प्रदेश में जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान सम्पन्न, 5,00,000 से अधिक लोगों ने भाग लेकर विभिन्न सेवाओं का लाभ लिया और उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं। 2 लाख से अधिक छात्र छात्राएं होंगे शामिल। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वाह्न 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।